والی وہ کہانی تھی، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اخباروں میں اس کے خطوط بھی لکھے اور یہ کہا کہ بھائی اس طرح کی کہانی تو اخباروں میں ہر ہفتے چھپنی چاہیے، ایک صاحب نے تو یہ لکھ دیا کہ اگر دوسری کہانی میں ہم نے تیسری بار بار چھپا جائے، تو وہ لوگوں نے اس کو بھی خاصا پسند کیا کیونکہ وہ ایک غیر مسلم کے ذریعے ایک مسلمان کو حج کے بھیجا گیا تھا پیسہ خرچ.
نہیں نہیں، اب آپ کہانی کا کہانی افشا مت کیجیے، کہانی تو ہم ابھی آپ ہی کی آواز میں سنانے والے ہیں. سہیل صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ایسی دل کو چھونے والی کہانی آپ نے لکھی، اور جیسا کہ آپ نے کہا صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کو اس وقت ایک جو ہے نا مذہبی اور روحانی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور یہ کہانی اس پہ پوری اترتی ہے. تو ہم نے بات بھی کی ہے حیا صاحب سے، گنگا رام صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے بولنے میں، ان کے بیٹے سے بات ہوئی تھی میری، لیکن بہرحال آپ کی کہانی پہلے سنتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اور بھی. تو لیجیے سامعین، سنتے ہیں کہانی، یہ سہیل صاحب نے سنائی ہے، اس کے بعد اس کہانی کے جو کردار ہیں ان سے بھی ملیں گے ہم.
آبادی تو لگ بھگ ہمارے گاؤں میں تو ہندو کی آبادی کم ہے، مسلم زیادہ ہیں، اگل بغل بھی مطلب آبادی ہے، ہندو مسلمان سب ایک اپنا رہتے ہیں مل جل کر، مندر بھی اچھی ہے اور مسجد بھی اچھی ہے، پوجا پاٹھ اس میں ہوتا ہے، اس میں نماز لوگ کرتے ہیں.
تو کیسی دوستیاں ہیں آپس میں، رشتے داروں کی طرح رہتے ہیں؟
ایک دم بالکل، سمجھ لیجیے ان کی شادی بیاہ پڑتا ہے تو نوتا کاری ہم لوگ کرتے ہیں.
تو جو ہم سنتے آئے ہیں کہ گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، وہی بات ہے یہاں پہ؟
ایک دم ایسے ہی ہے. ہاں تو ایسے ہی ہے، ان کی لڑکی ہماری، ہم اگر چاچا ان کے باپ کو کہتے ہیں تو ہماری بہن ہوئی. کھانے پینے میں وہ لوگوں کو شاکاہاری چلتا ہے اور ہم لوگوں کو ماساہاری رہتا ہے، وہ لوگ ماساہاری اگر کھانا چاہتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں کیونکہ وہ بکرے کا گوشت چلتا ہے.
تو اب بتائیے مجھے کہ آپ کے کتنے گاؤں میں کتنے گھر کتنے ہوں گے اس میں؟
ہمارے گاؤں میں آپ سمجھ لیجیے کہ 1000 گھر ہوں گے.
کچے کے پکے؟
کچے پکے، مڑئی، سب کچھ ہے.
نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ کی کیسے دوستی کیسے ہوئی آپ کی ان سے؟
اب وہ ان کے یہاں ہم نوکری کرتے ہیں.
اچھا.
2010 سے تو بلورو رکھے ہیں، وہی ہم چلاتے ہیں ان کے یہاں. اب شروع یہ ہوا کہ جب مہنگائی بڑھتے گئی تو میرا ویتن 3000 روپیہ تھا، تو اب وہ کہیں کہ اب ان کو ہم کاکا بولتے ہیں، تو کہیں کہ کاکا تنخواہ بڑھا دیجئے، تو کہیں اور بابو ایسا ہے کہ تنخواہ ابھی رک جاؤ اور تم جاؤ حج کرے آؤ، اس کے بعد ہم تنخواہ بڑھا دیں گے. اب تیاری ہو گئی تو 2014 میں ہم گئے حج کر کے آئے، اس کے بعد پھر 2015 میں ہماری تنخواہ 1000 روپیہ اور بڑھا دی گئی.
تو انہیں کیسے پتہ لگا کہ آپ کو حج کا شوق ہے؟
میں اصل میں گاڑی لے کے حج ہاؤس جاتا ہوں نا، حاجی لوگ کو لکھنؤ پہنچانے، تو آ کے ان سے بیٹھ کر بات مانے آپس میں بات ہوتی تھی کہ کیسا وہاں لگتا تھا ایسا ویسا، تو ایک سب بات بتا رہا تھا، کاکا آنے کو دل نہیں کرتا ہے جب حاجی لوگ جاتے ہیں لیکن کیا کیا جائے. تو ویسے ہی بات کرتے کرتے تو ان کے دماغ میں آیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ حج کر آؤ.
کتنا خرچہ وغیرہ کتنا آیا؟
اب وہ خرچہ لگ بھگ 2,00,000 روپیہ. وہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، وہ پیسہ اسٹیٹ بینک میں یہاں جمع ہو گیا اور یہاں سے وہ چلا گیا حج ہاؤس ان کے کھاتے میں. ایک کمیٹی ہوتی ہے حج کی، تو ہم اس کے بعد یہاں سے تیاری کیے، اس کے بعد ہم یہاں سے 2 ستمبر کو ہماری جہاز 8:20 پہ تھی لکھنؤ سے، اس کے بعد ہم وہاں پھر جہاز میں بیٹھے، اس کے بعد چلے گئے، پھر اس کے بعد واپسی ہم آئے 17 اکتوبر کو صبح. سب سے پہلے ہم پہنچے تھے مدینہ شریف میں، بہت اچھا لگا، دل یہ کہہ رہا تھا کہ نہ بھی جانا پڑے، گھر تو ٹھیک تھا ہاں، لیکن اب وہ مجبوری ہے کہ اتنے دن وہاں کی سرکار رہنے دے گی.
تو کیا کیا دعائیں مانگی وہاں جا کے؟
ان کے لیے دعائیں مانگی، مطلب بچے خیریت سے رہیں، اچھے رہیں، ہر بیماری سے دور رہیں اور کمائی میں اور برکت ہو، یہ سب دعائیں مانگی، اور اپنے لیے بھی مانگی اور گاؤں جوار کے لیے، پورے ملک کے لیے مانگی، گنگا رام جی کے لیے وہی تندرستی وغیرہ مانگا اور کمائی میں برکت ہو، لڑکے والے خیریت سے رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں.
تو کیا گنگا رام جی بہت پیسے والے آدمی ہیں جو انہوں نے اتنے آرام سے دے دیا؟
نہیں پیسے والے آدمی نہیں ہیں، بہت مانے سمجھ لیے کرتے کھاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ بہت پیسہ ہے. میرے گاؤں میں لوگ وشواس نہیں کر رہے تھے کہ یہ بھی جائے گا حج کرنے، ہاں لیکن جب پیسہ پہلی قسط جمع ہو گئی 81,000 روپیہ، تو دوسری قسط پھر آ گئی 1,92,100 روپیہ، تب لوگوں کو وشواس ہو گیا کہ اب یہ جائے گا حج کرنے. تو لوگوں نے کہا بہت اچھا کام کر رہا بھائی، اور پورا سمجھ لیجیے کہ کئی ضلع کے لوگ، پیپر میں وغیرہ بھی آیا، ہر میڈیا والے بھی ہر پیپر والے پہنچے تھے، उसके बाद अपना वो टीवी चैनल लेके आए थे अपना, लगाए मैक, मोटे माइक लगाए, उसके बाद बयान ले और दुनिया में दिखाए टीवी के।
तो आपके अपने घर में कौन कौन है खानदान में?
मेरे घर में मेरी औरत है, मैं हूँ, माँ है और भाई है, बच्चे मेरे पास नहीं है। शादी हुई तो बहुत दिन हो गया, ऊपर वाले अल्लाह का ऐसा कुछ क्या बताया जाए।
तो आपके वालदैन आपके साथ रहते हैं?
बाप तो मेरा बचपन में इंतकाल कर गया था, 5 ही साल का तो मैं था, तो लगभग हो गया 35-36 साल।
फिर आपकी कैसे जिंदगी गुजरी उसके बाद, बाप के मरने के बाद?
वही माँ अपना पाली, मजदूरी दतूरी करके खिलाया जिलाया अपना, कैसो कैसो सियाने हुए। इसके बाद फिर अपना यही हुनर सीखा गाड़ी का 90 में, उसके बाद ही गाड़ी उड़ी चलाते थे अपना और यही अपना खा जी रहे हैं। हम लोगों के इधर वो करगा चलती थी, कपड़ा बनाते थे लोग, तो वही कपड़ा बीन के बाजार में बेचा जा बिकता था। माँ बूढ़ी है और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी विकलांग है, भाई मेरा सुनता नहीं है, नहीं तो असल में मुझसे अलगे रहती है मेरा भाई और माँ, तो घर मतलब है कहीं में सटा हुआ है। और अब वो माँ छोटे भाई के पास रहती है और हम लोग जो पुरानी अपना रहती हैं।
तो माँ ने, माँ अभी भी काम करती हैं कि नहीं?
माँ इसे कोई काम अब नहीं करती है, लेकिन ये है कि चलती फिरती रहती है।
बड़ी हिम्मत वाली हैं आपकी माँ के 2 बच्चों को उन्होंने पाला है इतने छोटे।
हाँ हाँ बहुत एहसान है, अल्लाह का करम है। छोटा भाई 1 महीने का था जब बाप मेरा इंतकाल किया है। खानदान में लोग थे लेकिन वो लोग हाथ नहीं रखे, ननिहाल वाले लोग मामी मामा यही सब अपना सेवा जतन किए। उसके बाद मजे मजे बड़े हुए, उसके बाद अपना ये गाड़ी वगैरह सीखे, उसके बाद कमाने खाने लगे। मामू ने हमारे लगा दिया गाड़ी पे, कहे चलो जब नहीं कुछ करोगे तो गाड़ी सीख लो, तो लगा दिए गाड़ी पर, तो 1-2 साल के बाद हुनर हो गई।
मगर मैं कहती हूँ हयात साहब, आपके अंदर भी कोई ना कोई कमाल है ना, जो आपका उन्होंने इतना किया आपका काम।
घर की तरह है साहब एकदम, हाँ एकदम घर की तरह। अब उनके 5-5 बेटी 4-4 बेटियां हैं और वो घर वाली हैं, शादीशुदा हैं, सबके पास लड़के बच्चे हैं और 2 बेटे हैं तो वो भी लड़के वाले वाले हैं, तो घर की तरह हमारा आना जाना बिल्कुल रहता है। हमारे बाप से ने उनकी दोस्ती बहुत बचपन में थी। हमारे बाबा तो समझ लीजिए कि घर पे रहते थे, हमारे बाप 3 भाई थे, तो 3 भाई में अपना अपना बात लिया, तो हम लोग अपना अलगे हो गए। बाप जब इंतकाल कर गया तो वो लोग नहीं मतलब देखभाल कर रहे थे। अब आज जो यही है कि अल्लाह ताला एक आला औलाद दे देता, और तो कोई चीज नहीं है, यही एक चीज की खासियत है अल्लाह से, जो तमन्ना थी वो तो पूरा हो गया
हज का।
हाँ वही तो मेन तमन्ना थी पूरी दुनिया में, और क्या है, कोई शौक नहीं, सब शौक किसी में टेंशन में रह गया है, लेकिन वही वही एक चीज का टेंशन है बच्चे का।
तो समीन आपने सुनी इनकी गुफ्तगु, कहानी पूरी आपके सामने वाजे हो गई, क्योंकि सुहेल साहब ने इस कहानी को बड़े इख्तिसार से बड़ी खूबसूरती से लिखा था। लेकिन हया साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अब रिकॉर्डिंग में भी मौजूद थे, तो मैंने कहा कि वो कहानी खुद सुनाए तो अच्छा है। अंजुम साहब, आपकी मुलाकात हुई इनसे, मोहम्मद हयात से कभी? और दोनों से, गंगाराम जी से भी?
हाँ गंगाराम से भी।
अच्छा, आपने बड़ी अच्छी तस्वीर भेजी थी, मेरे ख्याल उनकी हज पे जाती हुई तस्वीर थी, जिसमें हार पहने हुए थे और गले में हार डाले खड़े थे दोनों, है ना?
जी
अच्छा, मैं एक और शुक्रिया अदा कर दूँ सुहेल साहब, आपने हमें बड़ी अच्छी इनका गांव जो लोहारसन है यूपी में कबीर नगर में, तो उसमें अब्दुल बाकी साहब ने जो रोज़नामा इनकलाब के हैं आपको तस्वीरें उतार के भेजी, और हम अपने फेसबुक पर जब स्टोरी लगाएंगे तो बाकी साहब भी उसको देख सकेंगे कि उनकी अच्छी सी तस्वीरें इसमें शामिल हैं। तो बहुत मेरी तरफ शुक्रिया अदा कीजिएगा उनका, और आपका भी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। तो कोई ऐसी बात तो नहीं जो रह गई हो जो आप खास तौर पर जिक्र करना चाहते हो अभी? चलिए, तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी और लिखते रहिए अब आप। खुदा हाफिज अंजुम साहब आपको। समीन सुहेल अंजुम तो चले गए, और सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको, क्योंकि हमारे प्रोग्राम टेलीविज़न पे भी होता है, सैटेलाइट टीवी पर, आपको जो 2 लोग नज़र आ रहे हैं उसमें जो ज़ाहिर है आप समझ गए होंगे अहराम बांधे हुए हैं, वो मोहम्मद हया साहब हैं। और मोहम्मद हया साहब हमारे साथ भी हैं इस वक्त अपने गाँव लोहारसन से। हया साहब आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ साहब, आपने अपनी जो इंटरव्यू आपने दिया, आपने सुनी कहानी जो बता रहे थे आप, बातें सुन रहे थे आप वो? तो अब बताइए, आप कहते हैं आपकी उर्दू अच्छी नहीं, आप तो इतनी अच्छी इतनी मीठी उर्दू बोलते हैं, कहाँ आपकी उर्दू खराब है? कैसी लगी अपनी सुनाने की आपको?
बहुत अच्छी लगी।
बहुत अच्छी लगी ना। अच्छा, तो और असल में गंगा राम जी से हमारी बड़ी कोशिश के बावजूद ना, वो उनका कुछ काम के औकात ऐसे, तो करते क्या है वो, कुछ समझाइए हमें, क्या कहाँ पर काम करते हैं वो?
तो है
नहीं, मगर कहाँ पर उनका काम क्या है, जो बिजनेस है उनका?
आरा मशीन वगैरह है।
अच्छा, लकड़ी काट करती है वहाँ?
लकड़ी चीरते हैं।
अच्छा, और आप क्या करते हैं? उनके ट्रक चलाते हैं?
उनकी गाड़ी चलाते हैं बोलेरो है।
अच्छा, तो चलिए, मुझे आपका गांव तो हमारे बहुत ही जो है लाखों सुनने वाले हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा है, तो आपका लोहारसन तो जगह जगह मशहूर हो गया होगा। कैसा गांव है आपका लोहारसन जो है?
ठीक है, गांव तो मशहूर हो चुका है एकदम से।
अच्छा, आप ही के नाम से?
हाँ।
चलिए, ये इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक तो आपने सबसे बड़ा फ़र्ज अदा किया, अपना हज अदा किया, और फिर गांव भी मशहूर हो गया। तो हम जो हैं आपको भी खुदा हाफिज़ कहेंगे, किसी वक्त गंगा राम जी से कहेगा कि वो भी आपके साथ प्रोग्राम में आए, ताकि हम आप दोनों का साथ साथ प्रोग्राम कर सकें। ठीक है? तो सामिन, ये मोहम्मद हयात साहब थे, जो कि गांव लोहारसन से, यूपी का ये गांव है कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो हमारे साथ थे। तो इनको हमने खुदा हाफिज़ कहा है। एक और कहानी हमारे पास है, और उसके मिलने की बड़ी दिलचस्प दास्तान है। वो ये कि जब लोहारसन की बात हुई, तो मैंने कहा कि मैं गूगल करके देखती हूँ, क्योंकि हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जगहों की। तो जब मैंने गूगल किया लोहारसन को, तो मुझे एक अच्छा सा वीडियो नज़र आया, जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे थे जो रोटियाँ पका रहे थे, और इतने छोटे बच्चे थे कि मतलब मैं समझती हूँ कि हम तो इतने छोटे बच्चों से ये भी कहते हैं कि माइक्रोवेव पे ना छुएं उसको, चाय का गर्म हाथ कप हाथ में ना पकड़ें। तो खैर, फिर जैसे कि मैं कहती हूँ कि गूगल जिंदाबाद, ढूंढते ढूंढते वो वीडियो जिन्होंने बनाया था उनसे भी बात हो गई। तो अभी हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, अब्दुल काबिर साहब हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर चलते हैं अपने प्रोमो की तरफ। याद दिला दूं आपको, पता नहीं आप ये बात क्यों भूल जाते हैं, कि इस प्रोग्राम के दौरान चाहे ये टेलीविज़न पर आ गया, लेकिन मैं भी वही मेरी कहानी की मेज़बान उर्दू, जो आप रेडियो पर सुनते थे और इतने अच्छे अच्छे फ़ोन करते थे, ये वही प्रोग्राम है। थोड़ा सा वक्त अलबत्ता 2 घंटे पहले हो गया है, तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन कीजिए 0800-77789, ये हमारा नंबर है, तो जिस पे आप मुफ्त कॉल कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से। अगर आप हमें 1 सेकंड का फ़ोन कर लें, तो फिर हम आपको दोबारा ख़ुद कॉल कर लेंगे। तो चलिए प्रोमो सुनते हैं, और फिर उसके बाद अब्दुल काबिर से बातें होंगी। जी अंजुम।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ, जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली है, करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353, यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामीन, पते आपने नोट कर लिए होंगे, मेहमान जिनका मैंने जिक्र किया अब्दुल काबिर साहब, वो हमारे साथ हैं, कानपुर में हैं ये, اور تعلق ان کا ظاہر ہے یو پی سے ہی ہے. تو ابھی ان سے باتیں کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو عبد القابض ہماری؟ میرا خیال ہے کہ ان کو ہم اسکائپ پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خود یہ بڑے خود بھی ہائی ٹیک قسم کی شخصیت ہیں, ان سے ابھی بات چیت ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم پہلے ان کا ویڈیو دکھا دیتے ہیں تاکہ اس دوران ان کی آواز بھی ہمیں آنے لگے, کہ ابھی مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. میں کوشش کر رہی ہوں جو بات کرنے کی. ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دو بچوں کا, ایسے ہی چلتے چلتے, یہ کوئی پروفیشنل انہوں نے نہیں بنایا تھا, یہ ان کو اچھی لگتی ہیں کہانیاں ڈھونڈنی, اور یہ جب بھی باہر نکلتے ہیں کیمرہ ساتھ ہوتا ہے ان کے, اور کوئی نہ کوئی کہانی ہم خود بھی اس کو جب دیکھتے ہیں تصویروں کو دیکھ کہانی بنا لیتے ہیں. تو لیجیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر عبد القابض صاحب سے بات کریں گے. یہ ویڈیو لوہارسن کا نہیں ہے, لیکن ایک ایسے گاؤں کا ہے جسے آپ لوہارسن ہی سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ گاؤں تو چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو, ہمارے جنوبی ایشیا کے گاؤں سب ایک سے ہی ہوتے ہیں. بلکہ میں نیپال گئی تھی تو مجھے تو نیپال کا گاؤں بھی بالکل جنوبی ایشیا کا ویسے. تو چلیے ہم وہ ان کا کلپ دیکھ لیتے ہیں. پہلے انجم بتا رہے ہیں کہ تیار ہے کلپ, پھر ہم باتیں کریں گے.
اور کا دل لے ریا ویم ڈری ہو کا ہو کا تو تو کا پہلے بنائے کے جرائے کا فائدہ پہلے بنا لے چاہیے پھر وہ میں ڈر چاہیے لکڑی کہاں
تو سمین جو ہمارے جو ریڈیو پہ سن رہے ہیں یہ دو بچے ہیں, بیچ میں آپ کو آوازیں بھی آئی تھیں, یہ عبد القابض صاحب جو ہیں یہ بچوں سے باتیں بھی کر رہے تھے. اور اتنی میٹھی ان کی آوازیں ہیں, بالکل چڑیوں جیسی آوازیں ہیں, اور جیسے چڑیاں چگتی ہیں ویسے ہی اپنے روٹیاں بنا رہے ہیں. اور مجھے اچھی سی بات یہ لگی کہ میں نے دیکھا کہ عبد القابض جو کہ ظاہر ہے کہ اردو ذرا مختلف انداز میں بولتے ہیں وہ, اور کا, اور میں تو اتنی اچھی میٹھی زبان میں نہیں بول سکتی, لیکن ابھی ان سے پوچھوں گی کہ وہ بچوں سے پوچھے تھے کہ یہ آگ پہلے سے کیوں جلا رہا ہو تم, جو مجھے سمجھ میں آئی بات. تو بچے بہت دانش مندی سے انہیں سمجھا رہے ہیں, روٹیاں بھی انہوں نے آگ پہ رکھی ہیں. تو عبد القابض صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ انجم ان کو میری غالباً میں آواز نہیں آ رہی. قابض صاحب کو
میری مجھے آپ کی آواز سنائی دے.
اچھا اب مجھے مجھے بھی اب آپ کی آواز کچھ ایک جھلک سنائی دی. تھوڑا سا بتائیے یہ جو آپ بول رہے تھے یہ پوربی زبان میں بات کر رہے تھے آپ ان سے بچوں سے؟
یہ ہمارے اتر پردیش انڈیا میں جو یو پی ایسٹ ہے
جی
وہاں پر یہ لینگویج بولی جاتی ہے, اور یہ کچھ 100-150 kilometers کا ایک ایریا ہے وہاں پر ہی بولی جاتی ہے. اس کے آپ ایسٹ سائڈ میں جائیں گے تو بہار میں بھوجپوری ہو جاتی ہے, اور ادھر لکھنؤ کی طرف بڑھیں گے تو اردو اور موسٹلی ہندی اور اردو کا ہو جاتا ہے. تو یہ اسی ریجن میں بولی جاتی ہے.
اچھا.
اور مجھے پتا نہیں اس کو پوروی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, بٹ یہ کافی میٹھی زبان ہے.
کافی نہیں بہت کچھ کچھ بولیے. اچھا آپ مجھ سے کچھ پوچھیے اپنی اسی زبان میں, میٹھی سی زبان میں, پھر میں جواب دوں گی. میں دیکھتی ہوں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں مجھے.
اچھا میں کوشش کرتا ہوں.
مطلب کوئی سوال کیجیے مجھ سے, کافی مشکل سوال پوچھے.
کا ہو کچھ کھائے ہو کہ نہیں,
کیا دل پہ چوٹ لگا دی آپ نے. صبح کا وقت ہے, ابھی کوئی ناشتہ بھی نہیں کیا اور آپ سے باتیں ہو رہی ہیں, بس کچھ تھوڑا بہت کھایا, ایسی چائے کا کپ کو اگر کھانا سمجھا جائے تو. صحیح جواب ہے نا میرا, یہی سوال تھا نا.
بالکل بالکل.
اچھا اب اپنے بارے میں بتائیے ہمیں کچھ کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کا میں یہ تو کہہ سکتی ہوں امیجینیشن بہت اچھا ہے. ایک چھوٹی سی یہ جو آپ نے بنائی تھی ویڈیو, اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو انسانوں سے پیار ہے, اپنی زمین سے بھی بہت پیار ہے. تو کیا کیا مشاغل ہیں, کیسے کیا کرتے ہیں آپ؟
میں پیشے سے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں.
اچھا.
اور میں نے بہت ساری کمپنیز میں کام کر کے, ابھی میں واپس کانپور میں, میری اپنی خود کی ایک کمپنی ہے اور چھوٹی سی ہے, 10-15 لوگ ہیں اس میں. और उसके अलावा मैं थोड़ा शौक रखता हूँ मोटरसाइकिल वगैरह राइड कर पे जाता रहता हूँ टूर्स पे, और मुझे काफी शौक है मतलब हाईवेज के अलावा जो छोटे सड़कें होती हैं, जो छोटे स्टेट हाईवेज होते हैं और जो गांव और कस्बों के बीच से होकर रास्ते निकलते हैं, मुझे वहां पे चलाने का शौक है और बेसिकली कल्चर में जो होता है डिफरेंसेस हैं उसको देखना और समझने का काफी दिलचस्पी है उसमें मुझे।
अच्छा ये बताइए मुझे, अब आप मुझे नजर भी आ रहे हैं और मैं देख सकती हूँ आप एक यंग आप एक नौजवान हैं और ज़ाहिर है बहुत टैलेंटेड भी हैं, क्योंकि एक तो आपने इस उम्र में एक कंपनी बनाई और फिर ये कि इसमें इमेजिनेशन भी आपका ज़बरदस्त है। तो ये बच्चे जो हैं, ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने मुन्ने मुन्ने से बच्चे ये घर से रोटी क्यों नहीं पका के लाए, ये वहाँ बैठ के क्यों बना रहे थे?
गाँव में अक्सर ये छोटे बच्चे हैं, मतलब ये बड़ी आयरनी है, एक तरफ हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वहाँ पे रोटी बना रहे हैं, मगर ये बच्चे अपने जानवरों को, गाय बकरी हो गई भैंस हो गए, इनको चराने के लिए खेतों में ले जाते हैं, इनको जिम्मेदारी दे दी जाती है सुबह से कि पूरे दिन चरा के शाम को घर पे लाना है।
अच्छा,
तो अक्सर घर दूर होता है, गांव के अंदर होता है, तो ये कुछ ना कुछ घर से लेके निकल आते हैं, और एक तो इनका मैं नहीं कहूंगा कि घर नहीं जा सकते खाना खाने के लिए, मगर शायद ये बेहतर समझते हैं कि अपना बना लिया गांव में। ये जो आपने वीडियो दिखाया ये एक तालाब है और ये एक बाग के बीच में है, आमों अच्छा। का बाग है उसके बीच में है, पीछे बैकग्राउंड में बहुत बच्चों के खेलने की आवाज भी आ रही होगी, तो सबने अपने जानवर खेतों में छोड़ दिए हैं जो चर रहे हैं, और बच्चे जो है बाग में आम तोड़ रहे थे उस वक्त।
अच्छा।
और ये दो बच्चे जो है, ये दो बच्चे बेसिकली वहाँ एक जो तालाब है उसके किनारे वहां से पानी लेकर के, और ये जिसे हम रोटी कह रहे हैं ये इसको लीटी बोला जाता है उस इलाके में।
अच्छा।
तो ये आटे को मिलाकर इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके लीटी बना रहे हैं, और ये फिर खाएंगे और फिर दो चार घंटे में और शाम होते हुए घर पहुंचेंगे। तो
अच्छा।
मजबूरी नहीं है इनकी, बस ये शायद ये इनको मजा भी आता है करने में, और ये थोड़ा इनको कन्वीनियंट भी है कि घर नहीं जाना पड़ेगा, अपना घूमे फिरेंगे।
असल में ये उस उम्र में जिसमें हर चीज़ मीठी लगती है और मज़ेदार लगती है और ज़िंदगी बहुत खुश होती है, और यही चीज़ मेरे ख्याल है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वरना जितनी मुसीबतें जनूबी एशिया में लोगों को उठानी पड़ती हैं ख़ासतौर पे जब वो गरीब होते हैं। अच्छा आपने मुझसे एक वादा किया था, असल में आप ही की इस छोटी सी वीडियो ने मुझे ये ख्याल दिया कि हमारा एक सिलसिला होता था सिटीज़न जर्नलिस्ट का, उसे हमें दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग जो है ना एक फ्रेशनेस लेकर आते हैं प्रोग्रामों में, और वो जो चीज़ देते हैं वो हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है किसी प्रोफेशनल उसमें। आप हैं, आप तो प्रोफेशन में हैं भी, लेकिन बहरहाल ये आपका शौक है, तो आपने वादा किया है कि आप कुछ लोगों से बात करेंगे जो इस तरह की कहानियां जमा करते हैं।
हाँ, बहुत बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको जानता भी हूँ, और मैं उनसे जिक्र करूंगा, पूछूंगा, अगर वो मुझे यकीन है कि वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कहानियां पहुंचे।
हाँ।
तो इंशाल्लाह बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आप इंट्रोड्यूस करूँ आपसे, और फिर आप उनसे बात करेंगे, देखेंगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आपको लगता है कि इसे बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो जरूर।
आपकी जिंदगी की कहानी क्यों ना सुने कभी हम, आज नहीं लेकिन सच सच अगर आप सुनाए, पता नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक नौजवान की जिंदगी जिसने इतना कुछ किया, तो उसमें कहीं स्ट्रगल है उस कहानी में या आराम से मिल गई हर चीज?
स्ट्रगल है, मींस रैक्स टू रिचेस कह सकते हैं, मींस तो है, हर किसी की स्टोरी
हाँ,
होती है
कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, अब आपके वो लोग वादा वफा करें ना करें, अब जिनसे आप ये वादा करवाना बाकी है, लेकिन आप वादा करके जाइए कि अब ऐसी कहानियां में छोटी छोटी जब भी आप कभी निकलेंगे मोटरसाइकिल पे या वैसे तो भेजते रहेंगे, वादा?
जरूर जरूर, बिल्कुल, मैं खुद अभी देखूंगा कि शायद मेरे पास और भी ऐसी कुछ कहानियां वीडियोस होंगी तो वो शेयर करूंगा, और इसके अलावा अब इंशाल्लाह कहीं भी जाऊंगा तो इस चीज को दिमाग में रखूंगा कि ऐसे छोटे टिप्स और ऐसे जो रियलिटी है।
बिल्कुल, क्या आप मेरी कहानी के कहानी जमा करने वाले हैं? ठीक है ना,
जरूर जरूर।
तो अब्दुल काबिज बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त कहाँ हैं, कानपुर में?
जी, इस वक्त मैं कानपुर में हूँ और घर पे ही हूँ इस वक्त तो।
अच्छा, तो अगली दफा हम आपसे सुनेंगे आपके शहर की कहानी भी और बहुत सी बातें करेंगे। आज तो हमने असल में बुनियादी तौर पे हमारी गंगा राम साहब की कहानी थी और हयात साहब की, लेकिन मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। दरहकीकत मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आप लोग ही हैं मुस्तकबिल जो हैं हर मुल्क का और दुनिया का, तो बस आप लोग ऐसे ही अच्छे से बने रहिए और लोगों में दिलचस्पी लीजिए ताकि उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी बेहतर बना सकें। शुक्रिया बहुत बहुत,
बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम के लिए।
खुदा हाफिज़। तो सामिन ये अब्दुल क़ाबिस थे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कोई टेलीफोन कर दें भूले भटके। कहाँ तो ये हाल था कि हम तंग आ जाते थे, हम कहते थे कि भाई किस किस को लें और किसको ना लें, और अब यह हाल हो गया है कि आप फ़ोन ही नहीं कर रहे। बहुत बुरा लग रहा है और बहुत अफसोस भी हो रहा है। तो सादिया मुंतज़िर हैं कि आप कॉल करें 0800-777-789, हमारा टोल फ्री नंबर है। पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, फ़ोन कर दीजिए। और अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी हमें मास्टर बिशारत ने भेजी है, मास्टर बशारत अली। ये नारोवाल के एक इलाके फतोवाल से इनका ताल्लुक है। बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी के लिए हमने मधु किया है, एक लाहौर में मशहूर बहुत ही मुमताज़ डॉक्टर हैं, डॉक्टर हारिस बरकी साहब। डॉक्टर साहब आप हैं हमारे साथ इस वक्त? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा, डॉक्टर साहब को फ़ोन करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जैसे उनका फ़ोन मिलता है हम उन्हें आपसे मिलवाते भी हैं। अंजुम बता रहे हैं कि अभी तक फ़ोन नहीं मिल सका उनका। तो अभी आप फ़िलहाल कहानी सुनिए और उसके बाद हम बातें भी करेंगे मास्टर साहब से भी और डॉक्टर साहब से भी। जी, तो ये कहानी है मास्टर बशारत अली की, फतोवाल नारोवाल पंजाब से।
अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम बशारत अली ज़िया है। मेरी तालीम एम ए उर्दू और एम एड है। मेरे गांव का नाम फतोवाल सुलहरिया है। मेरा बचपन जो था वो मैं एक बहुत शर्मीला और हसास बच्चा था। बहुत जल्द परेशान हो जाता था, जूद परेशान था। क्लास 5 में पहली पोजीशन हासिल की थी और क्लास 6 में 722 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की थी। 7वीं में 654 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की थी। 1985 की बात है, 8वीं क्लास की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। एक रात मैं पढ़कर सोने लगा तो मुझे रात भर नींद ना आई। इसी तरह ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन रात मुझे मुसलसल नींद ना आई तो मेरे दिमाग पर थोड़ा सा असर पड़ गया। तो मेरे घर वालों ने इसको जादू टोना और किसी का किया कराया ठहराया। वो मुझे पीरों के पास ले जाते और मुझे तावीज पानी और बादाम रोगन खिलाते, लेकिन इससे मुझे अफाका तो ना हुआ। दिमाग में हर वक्त दर्द होता रहता था। इसी तरह मैंने 8वीं जमात के पेपर दिए और 636 मार्क्स लेकर क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की। 9वीं क्लास में भी इसी बीमारी के साथ मैंने 595 मार्क्स लेकर अव्वल आया। अगस्त का महीना था तो मुझे अजीब तरह की कैफियत भरी हो गई। मुझे खौफ सा होने लगा, सांसें कमतरी होने लगा, भूख खत्म होगी, वजन कम होने लगा, नींद गायब होगी और खुदकुशी की तरफ रुझान बढ़ने लगा। और जो बात जहन में आ जाती वो किसी सूरत में निकलने का नाम नहीं लेती थी। इसी बीमारी के साथ मैं 3 माह तक गुजारा करता रहा। 3 माह के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया और मैंने 10वीं जमात की तैयारी शुरू कर दी और 653 मार्क्स लेकर अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की। फिर मैंने FSC में दाखिला ले लिया। FSC के दौरान मुझे फिर दोबारा इसी किस्म की इलामत का इजहार होना शुरू हो गया। तो मेरी FSC छूट गई। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने FA की तैयारी शुरू कर दी और 634 मार्क्स हासिल किए। BA के दौरान मुझे दोबारा डिप्रेशन हो गया और डिप्रेशन की वजह से मेरे 2 साल जाया हो गए। इसी दौरान मुझे किसी ने लाहौर के माहिर नफ्सियात डॉक्टर हारून रशीद का पता दिया। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा 6 माह तक इलाज किया तो मैंने BA की तैयारी शुरू कर दी और 483 मार्क्स लेकर फर्स्ट पोजीशन में BA पास किया। फिर मैंने 1997 में BEd में दाखिला ले लिया। BEd में मैंने 707 मार्क्स लेकर फर्स्ट पोजीशन के साथ BEd पास किया। अभी मैं बीएड कर ही रहा था तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे 1998 में एक बेटा अता किया। बीएड करने के बाद मैं अपने वालिद के साथ दुकान पर काम करने लगा। दुकान पर 3 साल काम करता रहा। 2002 में मुझे इलाहाबाद पे टीचरी की नौकरी मिल गई और 2009 में हमें परमानेंट कर दिया गया। मैं आजकल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में नामे स्केल में काम कर रहा हूँ। मेरी तनख्वाह 21,000 है और साथ साथ डिप्रेशन की बीमारी के साथ भी मुकाबला चल रहा है। मुझे डिप्रेशन हो जाता है, उसका इलाज कराता हूँ, फिर हो जाता है, इसी तरह यह सिलसिला चल रहा है। आजकल मैं लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल से तकरीबन 1.5 माह से मेडिसिन ले रहा हूँ। इसी दौरान मेरे बेटे और बेटी ने 2015 में A+ के साथ मैट्रिक पास किया। बेटे ने 1100 में से 1022 मार्क्स हासिल किए और बेटी ने 948 मार्क्स लेकर ए ग्रेड हासिल किया। बच्चों के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। दिन दिन कर्ज के बोझ थले दबता ज्यादा जा रहा हूँ। बच्चों को पढ़ने का शौक है और मुझे पढ़ाने का शौक है, तो मैं चाहता हूँ मेरी को 10-12 हजार एक माह की मदद कर दें ताकि मैं अपने बच्चों के अखराजात पूरे करके उनको अच्छी तालीम दिला सकूं। दोनों डॉक्टर बनना चाहते हैं। दोनों ने मैट्रिक जो था ना इंग्लिश मीडियम में पास किया था। मैंने इंग्लिश मीडियम इसलिए रखाया था क्योंकि जब बच्चे FSC में जाते हैं, उर्दू मीडियम पढ़ने के बाद FSC में इंग्लिश मीडियम पढ़नी पड़ती है तो फ्लॉप हो जाते हैं। वो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ के FSC कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि FSC भी अच्छे मार्क्स में हासिल कर लेंगे, लेकिन डर ये लगता है कि मेरी इतनी कलील तनख्वाह में कहीं उनकी तालीम अधूरी ना रह जाए। तो कोई खुदा का बंदा अगर मुझ पर एहसान कर दे तो मेरे बच्चों का खर्चा बर्दाश्त कर ले ताकि वो आला तालीम हासिल कर सकें। जो बंदा मदद करेगा उसका सदका जारिया चलता रहेगा।
तो बहुत अच्छी सी कहानी थी और बड़े दिल पे असर करने वाली कहानी थी। अक्सर कहानियाँ जब भी मैं सुनती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि कितने कीमती लोग हैं और किस तरह एक मुसलसल कहते हैं ना जिद्दोजहद में इनकी ज़िंदगी गुजरती है। हर दिन लड़ते हैं ज़िंदगी से, फिर भी मास्टर साहब बहुत खुशनसीब आदमी बशारत अली साहब के उनको जब वो छोटे थे तो वालदैन इतने अक्लमंद थे कि उनको सिर्फ तावीज़ों पर नहीं इलाज करवाया बल्कि उनको एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। ऐसे ही एक अच्छे से डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर हारिस बरकी साहब लाहौर से। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
मुझे साथ फोन पे भी ले लें, मैं नंबर दे देता हूँ आपको एक।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल वैसे हम तक पहुँच रही है, सही। आपने थोड़ी पूरी कहानी तो नहीं सुनी लेकिन इनकी थोड़ी सी कहानी सुनी होगी। मास्टर बशारत अली साहब भी हमारे साथ हैं टेलीफोन पर। मैं पहले मास्टर साहब से बात करने से पहले चाहूँगी कि थोड़ा सा बताइए, मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनका बचपन में इलाज हो गया था और आप तो ज़ाहिर है लाहौर के हैं, डॉक्टर हारून रशीद को जानते होंगे, बहुत ही एक मुमताज़ शख्सियत हैं वो लाहौर की, तो उस इलाज के बाद ये अब तक इन पर क्यों डिप्रेशन का मर्ज इनका ठीक नहीं हुआ, जबकि बज़ाहिर एक अच्छे से बच्चे हैं, अच्छी ज़िंदगी है इनकी, नौकरी भी एक बाइज़्ज़त नौकरी है। जी डॉक्टर,
मुझे ये बताना होगा पहले कि जो डिप्रेशन का मर्ज है इसको मैं 3 लेवल पे ना एनालाइज करूंगा आपके लिए, तो सारी चीज समझ आ जाएगी। वो कहलाता है बायो साइको सोशल लेवल। पहले हम उसको बायो लेवल पे देखते हैं
जी,
कि इंसान की बायोलॉजी में क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो आ जाती है जेनेटिक्स। एक पेशेंट में और दूसरे पेशेंट में की जो जेनेटिक्स होती है वो एक दूसरे में फर्क होती है। वो ऐसे होता है कि कुछ लोगों के अंदर जो होते हैं जीन्स, वो सेरोटोनिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत इफेक्टिवली।
अच्छा,
बहुत इफेक्टिव किसी भी ट्रांसपोर्टेशन हो उन लोगों पे जो अटैक है वो कम होता है।
अच्छा,
फिर दूसरे किस्म के होते हैं एक जीन बड़ा होता है एक छोटा होता है उनमें से पार्शियल अटैक आता है। तीसरे किस्म के अनफॉर्चुनेट वो लोग होते हैं दोनों के जीन्स रिसेसिव होते हैं, छोटे स्मॉल होते हैं शॉर्ट।
अच्छा, जी।
अच्छा, उन लोगों के में जो डिप्रेशन है वो मुकम्मल ठीक नहीं हो पाता, वो अक्सर जो ना वो आता जाता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है।
अच्छा।
तो जो मास्टर साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं ये मेरे अपने ख्याल में उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनके दोनों की शॉर्ट जीन्स शॉर्ट एलील्स जिनके अंदर होते हैं।
अच्छा।
अगर इनको हम देखें पीछे से तो पता चलेगा कि इन लोगों की जेनेटिक्स में भी ये चीज मिलेगी,
उनकी अच्छा।
आदन में उनकी खाला मामा पुती वगैरह में भी ये चीजें नजर आती होंगी, या उनकी फैमिली में कोई एडिक्शन का मामला भी चल रहा होगा। तो एक वजह तो ये वजह हो जाती है जिसकी वजह से लोग ना मुकम्मल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। फिर उसके बाद बायो में आपकी जो मेडिकेशन है, जो मेडिकेशन आप दे रहे हैं, पहले जमाने में एक किस्म की मेडिकेशन ही दी जाती थी तमाम किस्म के डिप्रेशन के लिए।
अच्छा।
लेकिन आज के दौर में यह पता चला है कि मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशन होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन जो हैं वो देनी पड़ती हैं और उससे लोग ज्यादा बेहतर बेनिफिट
डॉक्टर साहब। अच्छा। यहाँ पे एक बात पहले पूछना चाहूंगी आपसे, एक थोड़ा सा आपको रोकूंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ वेस्ट में एक बहुत बड़ा मसला ये, यहाँ डिप्रेशन का मर्ज आप तो ज्यादा कौन जानता होगा, बहुत आम है। और होता ये है कि जिन डिप्रेशन की दवाओं से इलाज किया जाता है फिर आदमी उनका डिपेंडेंट हो जाता है, और फिर वो एक मसला दूसरा खड़ा हो जाता है कि अगर वो दवाएं नहीं लेता रहता तो फिर डिप्रेस्ड हो जाता है। और यही एडिक्शन का भी मसला है कि उनको एडिक्शन के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो उनके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये दवाओं से जो का जो है इसका कोई इलाज नहीं है, जो क्या हम कह सकते हैं इसको कि साइड इफेक्ट्स हैं या जो भी चीजें हैं,
थोड़ी सी बात को हमें पर्सपेक्टिव ज़रा देखना पड़ेगा।
अच्छा।
एक पेशेंट जो है जो जो एडिक्शन का जो कंसेप्ट है ना, सबसे पहले हमें इसको मैं एड्रेस करूंगा। एडिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक ड्रग जैसे आप लिप्टन है या एक अल्कोहल लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी अमाउंट बढ़ती जाती है कि आप एक पैक अल्कोहल से एक पूरी बोतल पे आ जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं ये बंदा एडिक्ट हो गया कि अगर ये छोड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा क्लीन में करेगा। इसी तरह जेनेटिक्स वगैरह है, लेकिन ये एंटी डिप्रेशन नहीं है कि आप एक स्टार्ट करें बढ़ते 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 दो पत्ते ले जाएं तो ये इसे हम एडिक्शन कहेंगे। देखिए ये जो हमारी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं इनकी डोज इंक्रीज नहीं होते सिग्निफिकेंटली, मतलब अगर एक मरीज मैक्सिमम एक से स्टार्ट करता है तो बहुत आगे जाके वो दो टैबलेट पे चला जाएगा, तो वो हमारे टेक्निकली एडिक्शन की डेफिनेशन से वो चीज मावरा है। तो एक चीज है, जैसे मैं ऐनक लगा के बैठा हूं आपके सामने, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं ऐनक का एडिक्ट बन गया हूं। एनक जो है वो मेरी जरूरत है, ठीक है ना। तो एडिक्शन हम उस चीज को कहते हैं जिसका इस्तेमाल आप बढ़ाते जाएं
जी।
और आपको वही रिजल्ट बहुत हाई डोज पे आके मिले, जैसे मैं एक एनक की बजाय 10 एनके लगा लूं,
ठीक,
तो फिर तो इसका मतलब ये होगा मैं एडिक्ट हो गया, वरना मैं एडिक्शन की डेफिनेशन में बात तो क्लियर हो गई।
अच्छा।
तो अब आ गए साइड इफेक्ट जो है, जो इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स कराते हैं। इनके दवाओं के साइड इफेक्ट्स में भी ये होता है कि कुछ तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो तो डेफिनेटली ऐसे होते हैं क्योंकि जो इंसान का एक एस्पेक्ट को ठीक कर देते हैं, लेकिन सेक्सुअली इंसान बहुत वीक हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, वाइफ उनकी नाराज हो जाती हैं, हस्बैंड नाराज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती नहीं क्या हुआ है, तो ये सोशल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये यहां तक तो एक जो हमारी मेडिसिन है उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी जिनमें थोड़ी सी नींद ज्यादा होती है
जी।
लेकिन आज के दौर में एंटी डिप्रेशंस की बहुत किस्में आ गई हैं, उनमें से एक ऐसी किस्म भी है जो कि नींद बिल्कुल भी नहीं लाती बल्कि नींद उड़ा देती हैं। कुछ लाती हैं जिनको नींद की जरूरत हो उसको उसके मुताबिक देते हैं और दूसरों को उसके मुताबिक देते हैं। सो आज के दौर में एक मेडिकेशन को अच्छी तरह हमने अगर प्रिस्क्राइब किया है, सारे साइड इफेक्ट्स और उसके साइन और सिम्टम्स देख के प्रिस्क्राइब किया है, तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग उनके रिजल्ट जो है वो बड़े अच्छे हैं जी।
अच्छा। बशारत साहब आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी, आ रही है।
बशारत साहब आपके, वैसे आपने असल मसला तो ये नहीं बताया था, डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन तो आपकी कहानी का एक हिस्सा था और मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगी ये बहुत बड़ी कामयाबी है अपने डिप्रेशन पे काबू पाना, बाकायदगी से दवाएं इस्तेमाल करना, जैसे कि आपने लिखा कि आप अब भी दवाएं लेते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये बात पूछी थी, अभी हम आपके बच्चों की कामयाबियों पे भी बात करेंगे और जो आपका असल मसला है। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, हमें कहानियाँ अक्सर मिलती हैं और लोग इसमें बड़े शर्माते हुए कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लीजिएगा, हमें बच्चों की पढ़ाई का मसला है। मैं उन्हें हमेशा ये बात बताती हूँ कि इसको एक स्कॉलरशिप समझना चाहिए। एक बच्चा जो ज़हीन हो और जो पढ़ना चाहता हो, उसके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो ये उस बच्चे की एक स्कॉलरशिप है, जिसपे तो माँ बाप को बड़े फ़ख्र से सर उठाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी एतराफ़ है उस बच्चे की ज़हानत का। और जो मास्टर बशारत साहब के बच्चों के लिए मैं कोशिश करूँगी, और मैं अपने सुनने वालों से भी जो कहानी सुन रहे हैं, अक्सर आप ख़ुद फ़ोन करके हमें कह देते हैं बच्चों की ज़िम्मेदारी आप उठा लेते हैं, तो मुझे खुशी होगी। आप में से कोई अगर फ़ोन करके ये कहे, लेकिन अगर आप नहीं कहते तो भी हम डॉक्टर बशारत साहब के बच्चों के लिए ज़रूर हर सूरत में ये जो इन्होंने कहा है कि उनके महाना अखराज जो हैं वो करवा देंगे, ताकि माँ साहब के बच्चे डॉक्टर बन सकें। अच्छा, आप ये बताइए, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछ रही हूँ, आप भी इसका जवाब सुनिएगा, कि डॉक्टर साहब बशारत साहब की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी हमें नज़र आती है, तमाम इनकी एजुकेशन जो है उसमें ये फर्स्ट आए, हमेशा मतलब जो एक हाई अचीवमेंट इनकी रही, और फिर इनके बच्चे इतने अच्छे पढ़ने में। तो अगर हमें कभी कभी लगता है ना कि डिप्रेशन आदमी को होता है नाकामी के खौफ से या किसी खौफ से, तो क्या हमेशा नाकामी का खौफ वजह नहीं होती, कोई और भी वजह होती है डिप्रेशन की? डॉक्टर साहब
जी मैं आपको जवाब देता हूँ कि कामयाबी नाकामी डिप्रेशन इनका आप में क्या है जी। कि होता है कि एक बंदा जो है वो आपको मुकम्मल कामयाब नजर आ रहा है, वो बड़ा एम्बिशियस है, वो काम कर रहा है, लेकिन क्या वो उस कामयाबी को उस तरह एंजॉय भी कर रहे हैं या कि नहीं कर रहा। कहते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स हो जाते हैं तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र करते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, रिजॉइस करते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार ये छोटी सी कामयाबी है, वो मैंने तो वो 10 मील लंबा एक गोल बनाया हुआ है, वो अचीव होगा तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करूंगा
जी।
अगर आप इस तरह देखते रहें कि लॉन्ग टर्म चीजों को देखते रहें और शॉर्ट टर्म चीजों को एंजॉय ना करें, तो बॉडी कहती है कि मुझे इतनी मेहनत इतना रिवॉर्ड करने का क्या फायदा, वो उससे वो खुशी नहीं हो रहा। तो इस तरह के फैशनिस्ट टाइप लोग होते हैं वो अक्सर अपनी नाकामियों को बहुत बड़ा कर देते हैं और अपनी कामयाबी को बिल्कुल ब्रश साइड करते हैं, जैसे कि ये कोई चीज ही नहीं थी। और फिर इन लोगों में थोड़ा सा मसला ये होता है कि ये अनसर्टेनिटी नहीं बर्दाश्त कर सकते।
अच्छा,
आप देखना जिंदगी जो है ये तो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है।
बिल्कुल,
आप किसी भी जगह जाएंगे आपको यकीन नहीं होता कि मेरे अगला बंदा मुझसे मिलने जा रहा हूँ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे रिजल्ट क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। और वो चाहते हैं कि हम हर चीज को काबू में ले लें अपने हाथ के, वो कभी नहीं आ सकता। वो एक ऐसी चीज से ग्रैपल कर रहे हैं जो कि हाथ में ही नहीं आती। तो इससे बेहतर होता है कि आप उसको छोड़ देंगे।
बहुत आपने अच्छी बात कही, मतलब इसका मतलब है कि वही बात जो हमेशा समझाई जाती है रूहानियत का भी हिस्सा है कि आपकी खुशी आपके अपने हाथ में भी होती है, हमेशा वो दूसरों के हाथ में नहीं होती, खुश रहना हमें सीखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने जो जिस जो ज़ाहिर है आप एक बहुत ही मुमताज़ डॉक्टर हैं और बहुत सारी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें आप अहम फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, तो मैं वैसे ये वैसे आपसे एक बात कह रही हूँ, ये हमारी कहानियों का प्रोग्राम जो है इसमें अक्सर लोग आते हैं हमारे लोगों की मदद करते हैं, जिसमें एक आपके लाहौर के ही हैं डॉक्टर अमजद साकिब, बहुत से बच्चों की उन्होंने स्कॉलरशिप्स की, बहुत से घरों की किफ़ालत का ज़िम्मा लिया, और बहुत ही हमारे प्रोग्राम के जो मेहरबान लोग हैं उनमें से जी साकिब साहब एक हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, अब आप सामने हैं और डॉक्टर हैं और आपसे ज़्यादा आप तो दिलों की गहराइयों में उतरते हैं, तो कुछ ऐसे आपके जहन में लोग हैं, कोई ऐसे मुखय्यर हजरत जो बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ काम करते हो कि हम अपने मास्टर साहब के लिए कहें कि उनके बच्चों के लिए 10,000 का स्कॉलरशिप दे दें, कोई जहन में आता है आपको ऐसा?
यकीनी तौर पे है, इसमें थोड़ा सा मुझे जरा थोड़ी सी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मुझे मास्टर साहब से फोन नंबर दे दें।
अच्छा,
तो उनसे मैं डिस्कस कर लूंगा कि मैं उन्हें किस साइड पे रेफर करता हूँ।
अच्छा, तो मास्टर साहब थोड़ा सा आप अपने, हम आपने हमें तस्वीरें भी भेजी थी, हम चाहते हैं फ़ोटोज़ भी दिखाएं, डॉक्टर साहब भी वो देख सकते हैं क्योंकि आपके साथ साथ, तो अंजुम अगर वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इनके बच्चों के कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ इनके बहुत ही प्यारे बच्चे हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं, और थोड़ा सा साथ साथ हमें बताइए मास्टर साहब बच्चों के बारे में अपने, कितने बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं।
बड़ी बेटी जो ऐसा सिखा रही है मेरे पास ही बैठी है।
अच्छा,
जिसने 948 ए प्लस 10th में हासिल किया था।
अच्छा,
तो उससे बात करा दूं?
अच्छा जरूर जरूर जी, क्या नाम
तो
बेटा?
बड़ा बेटा
जी,
बेटा तो लाहौर में है, वो उधर ही अभी मसरूफ गांव में नहीं आता, कहता है गांव में टाइम लाया होता है, तो पेपर देकर आऊंगा, मई में पेपर होने हैं।
अच्छा, तो क्या आप फिक्रमंद रहते हैं हर वक्त बच्चों के लिए? आपको ये फिक्र रहती है बहुत, आपकी डिप्रेशन की क्या ये वजह, आप उनको एंजॉय नहीं करते कि इतनी कामयाब बच्चे हैं आपके, इतने कहाँ बच्चे इतने कामयाब होते हैं और इतने कम वसाइल में कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे, तो आप खुश तो होते होंगे ना इस बात से?
जिंदगी अगर खुशी है तो यही खुशी है कि मेरे बच्चे बहुत लाइक हैं, छोटे जो हैं वो जो 9th में है, जो 6th में है, वो भी बहुत रही हैं, तो मंजर पे मेरी खुशी है सारी।
बेटी कितने साल की है आपकी, बच्ची जो है
छोटी बेटी
जिसकी फोटो आपने भेजी थी पीले कपड़ों में बहुत प्यारी सी बेटी है आपकी,
ये 6th क्लास में है, ये 7th होती है जो।
अच्छा अच्छा अच्छा,
तो एक मेरा 9th में है जो वो स्कूल नहीं जा रहे, सफेद यूनिफॉर्म है बच्ची ने पहना हुआ।
जी जी जी,
तो बेटे ने काली शर्ट पैंट पहनी हुई है, वाइट शर्ट पहनी हुई है, छोटे बच्चे हैं जो दोनों।
बिल्कुल दुरुस्त,
तो बड़े बेटे की तस्वीर है साथ।
अच्छा,
तो बड़ी बेटी का रिजल्ट कार्ड है, रिजल्ट कार्ड में तस्वीर है।
बिल्कुल, मुन्नी सी बैठी हुई है वो कोने में, कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलिए हमें सबसे ज़्यादा तो उनके नंबर ही देख के खुशी हुई और आपका अच्छा सा ख़ानदान देख के भी। अभी आपसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, लेकिन मैं फिर वाजे कर दूं कि डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में मधु करने का मकसद ये नहीं था, लेकिन ये होता है ना कि जब मैं कहानी सुनती हूँ मेरे दिमाग में हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जिस कोई भी ऐसा शख्स जो सोशली जिनके कॉन्टैक्ट्स हों और कई ऐसे लोगों को जानते होंगे, तो पूछने में कोई हरज चूंकि नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कि डॉक्टर साहब का असल जो उनकी अहमियत है गुफ्तगू की, वो इतनी अच्छी उन्होंने हमें तफसील से बातें बताई, और हम आपकी वजह से चाहते थे कि हमारे सुनने वालों को डॉक्टर साहब, एक इतने बड़े डॉक्टर्स के पास बहुत सारे लोग तो हिम्मत भी नहीं करते जाने की, हालांकि मुझे यकीन है कि हर सतह पर डॉक्टर साहब देखते होंगे मरीज़ों को, लेकिन ये कि बहुत सी बातें आप पूछ भी सकते हैं, अगर आप कॉल करें तो आपको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। मैं आपका मास्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपने जो बताया ये मैं आपका नंबर डॉक्टर साहब को दूंगी, वो भी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, और मैंने जैसे कि आपसे वादा किया है कि ये काम आपका ज़रूर हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अब आप मुझे बताइए कि एक हम आपको और कहानी सुनाते हैं, आपके पास इतना वक्त है कि एक और कहानी सुन सके हमारी, मुन्नी सी कहानी है।
9 o'clock तक है फर्स्ट टाइम।
बस ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये तो एक आम बिल्कुल पाकिस्तान में, तो आपको बताया कि रंग और शक्ल सूरत के कितने लोग जो है सोसाइटी किस तरह लोगों को और खासकर बच्चों को बना देती है जहनी मरीज, तो आप ये कहानी सुनिए और मैं चाहूंगी आप प्लीज लोगों को जी
नंबर बता देता हूँ,
0321 डॉक्टर साहब 885 के बाद क्या नंबर है? ठीक है, हम उनको कांटेक्ट करते हैं डॉक्टर साहब को, और इस दौरान हम सुनते हैं जूना की कहानी है इस्लामाबाद से हमारे पास, और जूना की कहानी भी एक मसले की कहानी है, लीजिए कहानी सुनिए और उसके बाद डॉक्टर साहब से बातें करेंगे जी। अंजू जूना की कहानी अगर आप हमें सुनवा।
मेरा नाम जूना श्वेत है, मेरा तल्लुक सरगोधा की एक पसमांदा गांव से है। मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इस दुनिया में अपने वजूद को सबसे बेकार समझती थी, इस चीज का एहसास इसके आसपास के सभी लोगों ने दिलाया था, जिसमें इसके घर वाले हमेशा पेश पेश रहे हैं। हम 6 बहन भाई हैं, जिनमें शक्लो सूरत के अतबार से मुझे सबसे कमतर ख्याल किया जाता था। نہ صرف ایسا سمجھا جاتا تھا بلکہ ہر وقت مجھے یہ احساس بھی دلایا جاتا تھا. آہستہ آہستہ اس رویے نے میری ذات کا سارا اعتماد ختم کر دیا اور میں کسی کے سامنے بات کرنے چلنے میں شک محسوس کرتی، بلکہ چلتے ہوئے اگر کوئی میری طرف دیکھتا تو میں گرنے لگتی. گھر میں جب بھی موسم کے کپڑے آتے مجھے سب سے برے رنگ کے کپڑے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ تمہیں کالے رنگ سے یہ کہاں اچھے لگیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے بھی خود کو انتہائی کمتر سمجھنا شروع کر دیا. نہ پڑھائی کر پاتی نہ کوئی کام. اسی دوران میری نانی امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میرے ماموں جو آباد میں رہتے تھے انہیں ساتھ لینے آ گئے. گھر والوں نے سب سے نکارا وجہ سمجھتے ہوئے مجھے ساتھ کر دیا، لیکن ان کا یہ اقدام اگڑے کو لگنے والی لات ثابت ہوا. میں دن رات اپنی نانی کا خیال رکھتی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت ہی سادہ مزاج اور نیک فطرت تھی. اسی طرح میرا آٹھویں کا رزلٹ آ گیا تو میں نے نویں کلاس میں داخلہ لے لیا تھا. یہاں بھی لڑکیاں مجھے کافی ستاتی، کچھ کہتی کیا تم افریقہ سے آئی ہو، لیکن میری زندگی تب حقیقی مینیو میں بدلی جب میرے ماموں کی شادی. میری ممانی ایک اچھے خاندان کی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی. انہوں نے آہستہ آہستہ میرا اعتماد بحال کیا، بتایا کہ میں بہت اچھی اور پیاری ہوں اور یہ کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں. کوئی اسی کی بات کرتی وہ مجھے ڈانٹتی، چلتے چلتے کسی کے نوٹس لینے پر ڈگمگاتی تو محبت سے ڈانٹتے ہوئے کہتی اب اگر ڈگمگائی تو ٹانگیں کاٹ دوں گی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. خیر ممانی نے مجھے نہ صرف کرداری سکھائی بلکہ انہوں نے مجھے اعتماد اور یقین کی دولت بھی دی. میں نے میٹرک کر لیا اور کالج پہنچ گئی. وقت میں کروٹ لی اور میری نانی اما کا انتقال ہوا اور ماموں کے ٹرانسفر کے بعد میں ایک بار پھر واپس گھر یعنی گاؤں چلی گئی. لیکن اب میں وہ رونا نہیں رہی تھی، میں نے جینا سیکھ لیا تھا، مجھ میں شعور پیدا ہو گیا تھا. میں شہر میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر رہنے لگی اور بی اے میں داخلہ لے لیا. دو سالوں میں میں نے بی اے کمپلیٹ کر لیا. میں بتاتی چلوں کہ اپنے دریال اور ننیحال میں میں پہلی لڑکی ہوں جس نے گریجویشن کی ہے. اسی دوران میرا بھائی اسلام آباد میں نوکری کرنے لگا اور ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے. میں نے نوکری کی تلاش کے ساتھ ساتھ اپنی گرومنگ پر بھی دھیان دیا. پھر مجھے اسلام آباد میں جاب مل گئی جس نے مجھے اعتماد دیا. وہاں مجھے نہ صرف پبلک ڈیلنگ اور پیشنٹ سروس کا تجربہ ہوا بلکہ میں نے ایک بغیر میڈیکل اسسٹنٹ کی خدمات انجام دینا شروع کر دی. جب سے میری اہمیت میں اضافہ ہوا ہے اس نے میرا اعتماد اس حد تک بڑھا کہ میں علامہ اقبال یونیورسٹی سے اب ماسٹر میں داخلہ لے رکھا ہے. میں نے سوچا ہے کہ ماسٹر کے بعد میں سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ڈپلوما کروں گی. آج کی زونا اور کل کی زونا میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری بات گھر والوں کے ساتھ ساتھ بہر اور کام والی جگہ پر مانی جاتی ہے. میری درخواست ہے نہ صرف گھر والوں سے بلکہ پورے معاشرے سے کہ رنگ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دیں. کسی کی شخصیت کو اگر آپ نکھار نہیں سکتے تو ملیا میل بھی نہ کریں. ایسے رویوں سے سامنے والا انسان کرچی کرچی ہو جاتا ہے. ہر کوئی میری طرح خوش قسمت نہیں کہ کوئی اسے سمیٹ لے اور کامیابی کی راہ پر ڈال دے.
میں تو آپ کی تصویریں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی، کیا پیاری، آپ تو اتنی اسمارٹ، اتنی کانفیڈنٹ، اور کیوں آپ کو کیسا لگتا تھا آپ کی شکل اچھی نہیں ہے زونا؟ لوگوں نے یقین دلا دیا تھا آپ کو کہ شکل اچھی نہیں ہے آپ کی؟
بس وہ اس وقت نہ سمجھ تھی اس لیے. اور میرا اینڈ پہ یہی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. انسان کو ایک موقع دینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کا ایک رنگ دیکھ کر
ہاں بالکل
اسے لوگ طنز کریں یا کچھ ایسے. تو سوری
بالکل صحیح ہے. بلکہ زونا میں کہوں گی کہ آپ نے جیسا کہا نا کہ آپ کی زندگی کسی نے بدلی, آپ کے انکل اور آنٹی جو ہیں انہوں نے, تو آپ بھی ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ تو بہت سے لوگوں سے ملتی ہوں گی, آپ بھی لوگوں کو یہ بات سمجھائیے, ظاہری شکل و صورت تو کچھ بھی نہیں ہوتی, اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اپنے کو اپنے اندر جو خوبیاں انہیں گرومنگ کرنی چاہیے ان کی سب سے زیادہ, ہے نا؟
جی جی.
تو بہت شکریہ ادا کروں گی زونا, آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھیں اور ہمارے ساتھ بہت ہمارے ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر حارث برقی صاحب تھے لاہور سے, ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنے آئندہ پروگرام میں بھی, اور انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. شکایت فون نہیں کیا آپ نے, کیا کروں میں آپ کا, تو فون کیا کیجیے. تو سامعین اس کے ساتھ ہی اب شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی اس تاکید کے ساتھ کہ کوشش کیجیے کہانیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ویڈیو بھی بھیجیں تاکہ ہم آپ کو نشر کر سکیں. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.